हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 जय नाथ माधव कुंज बिहारी
जय राधव
जय
Thank you.
Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
Radha Gopinath Radha, Gopinath Radhe.
Jaya 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 Jaya Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada. Jaya Jaya Gurudev,
Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada.
Nittai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Gaur Hari Bol.
Nittai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol,
Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol,
Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol,
Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol.
Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol.
Yugdaram Harinam Sankirtan Ki Jai. Kalidadhar Hare Krishna Mahamantra Ki
Jai.
Grantra Srimad Bhagavata Mahapurana Ki
Jai.
Sri La Rupada Ki
Jai.
Nithai Gaur
Hari Bol.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavate Vasudevaya. Vrishnaya Vasudevaya.
Vrishnaya Vasudevaya.
Devaki Nandanaya cha.
Devaki Nandanaya cha.
Nanda Gopa Kumaraya.
Gopakumaraya.
Govindaya namo namaha.
Govindaya namo namaha.
He Krishna Karuna Sindhu.
He Krishna Karuna Sindhu.
Dina Bandhu Jagatpati.
Dina Bandhu Jagatpati.
Gopesha Gopika Kanta.
Gopesha Gopika Kanta.
Shri Radha Kanta. Namostute
Radha Kanta.
ಸಪ್ತಕಾಂಚನ ಗೌರಂಗೀ
ಸಪ್ತಕಾಂಚನ ಗೌರಂಗೀ
ರಾಧೇ ವೃಂದಾವನೇಶ್ವರಿ
ರಾಧೇ ವೃಂದಾವನೇಶ್ವರಿ
ವೃಷಭಾನೋಸುತೆ ದೇವಿ
ವೃಷಭಾನೋಸುತೆ ದೇವಿ
ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಹರಿ ಪ್ರಿಯೇ
ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಹರಿ ಪ್ರಿಯೇ
ಜಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ
ಜಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ
ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ
ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ
ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧಾರ ಶಿವಾಸನಿ ಗೌರಭಕ್ತವೃಂದ
ಶಿವಾಸನಿ ಗೌರಭಕ್ತವೃಂದ
ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ
ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ
ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಹರಿ ಹರಿ
ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಹರಿ ಹರಿ
ಹರಿ ರಾಮ ಹರಿ ರಾಮ
ಹರಿ ರಾಮ ಹರಿ ರಾಮ
ರಾಮ ರಾಮ ಹರಿ ಹರಿ
ರಾಮ ರಾಮ ಹರಿ
ವೃತ್ರ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಮಹಾಪುರಾಣ ಕೀ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರಪಾದ ಕೀ ಪರಮ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಹೇ ಜೋ ಅಸಾಂ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಮಹಾಪುರಾಣ ಕೇ ಪ್ರತಿಮೂರ್ತಿ ಹೇ ಆಯೋ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ್ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ್ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಚಾರ್ ಶಬ್ದ ಹೇ ಭಗವತ ಭೇ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಹೇ ಶ್ರವಣ ಕರ್ನೆ ಚಾರ ಕಾರ್ಯ ಹೋತೆ ಕುಛ ಲೋಕ ಬೋಲತೆ ಹೇ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ್ ಮೇ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿ ಕಾ ನಾಮ ನಹೀ ಹೈ ಲೇಕಿನ್ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹೋತಾ ಹೈ ನಾ ಶ್ರೀ ಕಾ ಮತಲಬ್ ಹೀ ರಾಧಾರಾಣಿ ಹೈ ಜೈಸೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಮೇ ಕೋಯ್ ಬೋಲೇಗಾ ಭೈ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಮೇ ರಾಧಾರಾಣಿ ನಹೀ ಹೈ ತೋ ಹರೇ ಜೋ ಹೈ ಜಬ್ ಭೀ ಬೋಲಾ ಜಾತಾ ಹೈ ವೋ ಮತಲಬ್ ಹರೇ ಕಿ ಪ್ಯಾರಿ ಹರೇ ಮತಲಬ್ ಹರಿ ಕಿ ಪ್ಯಾರಿ ಹರಿ ಕಿ ಪ್ಯಾರಿ ಕೌನ್ ಹೈ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿ ತೋ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಮೇ ಆಠ ಬಾರ್ ಹರೇ ಆತಾ ಹೈ ಚಾರ್ ಬಾರ್ ಕೃಷ್ಣ ಆತಾ ಹೈ ಚಾರ್ ಬಾರ್ ರಾಮ ಆತಾ ಹೈ ಉಸಿ ತರಹ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕರ್ನೆ ಸೇ ಪೆಹಲೇ ಶ್ರೀ ಆತಾ ಹೈ ಶ್ರೀ ಮತಲಬ್ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿ ಶ್ರೀ ಮತಲಬ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶ್ರೀ ಮತಲಬ್ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಶ್ರೀ ಮತಲಬ್ ವೈಭವ್ ಶ್ರೀ ಮತಲಬ್ ಜೋ ಭೀ ಧನ್ ಸಂಪತ್ತಿ ಸಾಮ್ರತಿ ಜೋ ಭೀ ಆಸ್ಪಿಷಿಯಸ್ ಹೈ ಉಸ್ಕಾ ಮತಲಬ್ ಹೈ ಶ್ರೀ और उसके बाद भ भ से मतलब ये शास्त्र है जिससे आपको चार चीजें मिलेंगी भ से भक्ति ग से ज्ञान व से वैराग्य और त से तत्व तत्व मतलब वो वस्तु जानकर जिसको जानकर आप भाव सागर से तर जाओगे ये श्रीमद् भागवतम कंप्लीट ग्रंथ है मतलब जितने भी शास्त्र हैं जितने भी वेद शास्त्र वेद व्यास जी ने लिखे हैं उनको लिखने के बाद वेद व्यास जी ने जो निचोड़ दिया है सारे शास्त्रों का जो सार दिया है वो श्रीमद् भागवतम है और श्रीमद् भागवतम की महिमा को हमने कल श्रवण किया आज हम श्रीमद् भागवतम के प्रथम श्लोक से प्रारंभ करेंगे पहला अध्याय पहला श्लोक पहले तीन श्लोक में श्रीमद् भागवतम का मंगलाचरण किया जाता है मंगलाचरण क्यों करते हैं कि हम कोई भी अच्छा कार्य करने जाते हैं तो उसके अंदर विघ्न आते हैं क्योंकि कलयुग है और माया के कारण माया जो है वो विघ्न डालती है कुछ किसी भी अच्छे कार्य में इसलिए पहले मंगलाचरण किया जाता है और मंगल का मतलब होता है कि उसके अंदर मंगल हो शुभ हो कोई रुकावट ना हो कोई संकट ना आए तो चार श्लोकों में चार चीजें होती है मंगलाचरण में पहला होता है पहले में के जो जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं उसको पहले नमस्कार किया जाता है कोई भी कार्य करने से पहले यदि हम झुककर प्रणाम करते हैं जैसे हम प्रणाम करते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय तो प्रणाम करने प्रणाम का परिणाम क्या निकलता है आप घर में भी देखो बच्चा आएगा आपको चरणों पे हाथ रखेगा प्रणाम करेगा आप क्या करोगे आशीर्वाद प्रणाम करने का फल आशीर्वाद है इसलिए यदि किसी को आशीर्वाद चाहिए तो उसे झुकना सीखना चाहिए जब हम झुकते हैं तो हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है ब्लेसिंग्स प्राप्त होती है तो पहले मंगलाचरण में सबसे पहले प्रणाम किया जाता है उसके बाद वस्तु निर्देश कि जो मैं बताने वाला हूँ वेद व्यास जी सबसे पहले अपने इष्ट को प्रणाम करेंगे उसके बाद बताएंगे कि जो मैं अभी बताने वाला हूँ आपको भागवतम
उसकी क्वालिटीज क्या है, वस्तु निर्देश उसमें क्या है, और तीसरी चीज है कि वो आप सबको निमंत्रण देंगे कि आप आइए। और क्योंकि ये भागवत श्रवण करने से किस किस का कल्याण होता है जानते हो? एक जो बोलता है उसका कल्याण होता है, जो भागवत बोल रहा है उसका कल्याण होता है, जो भागवत श्रवण करता है उसका कल्याण होता है, और तीसरा जिसका कल्याण होता है जो कि ना सुन सकता है ना बोल सकता है, लेकिन अगर कोई अनुमोदन करता है कि अच्छा भागवत रखियो ना, भागवत दंड सुटोगा, खाली इतना भी बोल देना कोई कि अच्छा कार्य कर रहे हैं, ये भागवत सुन रहे हैं, भागवत पढ़ रहे हैं, ये बहुत अच्छा काम है, इतना भी यदि कोई बोल दे, कोई अनुमोदन भी कर ले, कोई घर पे बैठे भले नहीं आए भले नहीं सुने, आयोजन करने वालों का तो कल्याण होता है, जो पढ़ता है सुनता है उसका तो कल्याण होता है, जो खाली आशीर्वाद भी देता है मन में खाली ये बोलता है अच्छा संकल्प किया है इन्होंने बहुत अच्छा कार्य है कि ये भागवतम पढ़ने, उसका भी कल्याण होता है। लेकिन ये कलयुग है तो बहुत सारे लोग भागवत कथा कर नहीं सकते, बहुत सारे लोग भागवत कथा में आ नहीं सकते, लेकिन आए नहीं करें नहीं, लेकिन जो भागवत कथा करते हैं ना उनको भी कभी बोलते हैं इनको तो कोई काम है नहीं, मानदे बैठे हैं भागवत कथा करते रहते हैं हर वक्त, तो लोग है ना इसको अनुमोदन भी नहीं कर पाते। लेकिन जो भी भागवतम की थोड़ी सी भी प्रशंसा करता है हृदय से, अच्छा संकल्प भी करता है, उसका भी कल्याण होता है। तो पहले श्लोक में वेद व्यास जी बहुत ही सुंदर प्रणाम करते हैं अपने इष्ट को। वेद व्यास जी कहते हैं जन्माद्यस्य यतोन वयादि तरत चार्थिष्वभी यह स्वरार देने ब्रह्महृदा यह आदि कवये मोहयन्तिया सूरयः तेजो वारिमृदा वय विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम् धीमहि। प्रणाम करते हैं सत्यम परम धीमहि। मैं किसको प्रणाम करता हूँ? जो सत्य है। ना भगवान शिव का नाम लिया, ना ब्रह्मा का नाम लिया, ना विष्णु का नाम लिया, ना देवी का, किसी का भी, किसी देवी देवता का नाम नहीं लिया। इष्ट कौन है? जो सत्य है। किसका नाम लिया? सत्यम परम धीमहि। जो सत्य है मैं उसको प्रणाम कर रहा हूँ। क्योंकि अगर वो किसी पर्टिकुलर देवता का या किसी का, अगर कृष्ण का नाम ले लेते तो जो शिव के भक्त होते वो बोलते भागवतम किसका है? ये हरे कृष्ण वालों का है। अगर राम का नाम ले लेते कि मैं राम को प्रणाम करता हूँ, तो जो कृष्ण के भक्त है वो बोलते मैं ये तो हरे राम वरण जो राम के भक्त हो। देवी का नाम ले लेते तो जो वैष्णो के भक्त हैं वो नहीं आते, जो शिव का नाम ले लेते तो कृष्ण के भक्त नहीं आते। मतलब भागवतम को सार्वजनिक करने के लिए कि मैं किसको प्रणाम कर रहा हूँ? सत्यम। जो सत्य है उसको प्रणाम कर रहा हूँ। अब खोजो कौन है सत्य। आपको वेद व्यास जी ने बोला मैंने सारे शास्त्रों को पढ़ लिया, सारे शास्त्रों को लिख लिया, अब मैं उसकी शरण में आया हूँ जो सत्य है, जो सत्यम, जो सत्य है। अब आपको खुद डिसाइड करना है कौन है सत्य जिसकी शरण में वेद व्यास जी गए हैं, और जिसकी शरण में वेद व्यास जी गए हैं उसी की शरण में हमें जाना पड़ेगा। तो इसी भागवत महापुराण के महत्व को पद्म पुराण में लिखा गया, और उसमें बताया गया कि भगवान का स्वरूप कैसा है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पद्यादि हेतवे तापत्रयोन्विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः सच्चित आनंद। उसका स्वरूप कैसा है? भगवान का सत्य है, जो पहले भी था अभी भी है हमेशा रहेगा, जो कभी भी नष्ट नहीं होता है वो शाश्वत है। भगवान का स्वरूप सत्य है, चित है। चित का मतलब है भगवान को सब कुछ पता है। चित का मतलब होता है भगवान को जो पहले घटित हो चुका है, जो अभी हो रहा है, जो होने वाला है, वो सबका ज्ञान है। और आनंद, आनंद का मतलब होता है भगवान जो है वो आनंद से भरपूर है। एक बात बहुत ही सुंदर आचार्य गण बताते हैं कि संसार में हम सब दुखी होते हैं ना, हर कोई व्यक्ति को किसी न किसी तरह का दुख होता है। हर कोई भी इसका कारण क्या है कि जिसके विषय में हम सोचते हैं ना वो दुखी है। मतलब देखो, हम जिसके विषय में सोचते, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास कोई दुख नहीं होता है, हम फिजिकली भी बिल्कुल परफेक्ट होते हैं, मेंटली भी स्वस्थ होते हैं और फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन फिर भी हम खुश नहीं होते, हमारे अंदर कोई आनंद का अनुभव नहीं होता है, उत्साह नहीं होता है, ऐसा लग रहा होता है बेजारी है, मजा नहीं आता है, आनंद नहीं आता है। इसका कारण क्या है? जिसके विषय में आप सोचते हो उसकी जैसी कंडीशन है, वो कंडीशन जो है आपके ऊपर जो है वो हावी हो जाती है। जिसके विषय में, जैसे अगर कोई बच्चा है स्कूल गया है, स्कूल में बच्चा गया है और उसका टेस्ट हो रहा है, पेपर हो रहा है, और वो पेपर के टाइम पर परेशान है, उसको आ रहा नहीं है, उसको जो एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछे गए वो नहीं, और माँ घर पे बैठी हुई है, उसको कोई टेंशन नहीं है, प्रसाद दिखा लिया, लाइट वाइट सब सही, इलेक्ट्रिशियन बोल रहे, कुछ घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन माँ सोच किसके बारे में रही है? अपने बच्चे के बारे। और वो क्या हो रही है? वो टेंशन आ रही है उसको कि क्या है मेरे बच्चे का पेपर, पता नहीं कैसे होगा। उसको कोई टेंशन, उसके अपनी पर्सनल लाइफ का कोई टेंशन नहीं है। टेंशन किस बात का है? जिसके बारे में वो सोच रही है वो दुखी है, वो परेशान है, तो इसके कारण हम लोग भी परेशान है। इसलिए हमेशा शास्त्रों में एक ही उपाय बताते हैं, जब भी आप परेशान होते हो आपको क्या बताया जाता है? भगवान को याद करो, है ना, एक सिंपल सिंपल है बिल्कुल। और इसका कितना बड़ा इसका रिजल्ट निकलता है कि आप किसी भी टेंशन में हो, चाहे आपको कोई भी टेंशन है, जब आप भगवान को याद करते हो तो आपको आनंद आता है। जब आप नाम जप करते हो, जब आप भगवान का स्मरण करते हो, जब कोई कीर्तन करते हो, तो उसका कारण क्या है? क्योंकि भगवान हमेशा आनंद में रहते हैं। इस संसार में आप किसी को भी याद करते हो, चाहे वो आपका मित्र है, चाहे आपका रिलेटिव है, चाहे कोई भी है, वो खुद दुखी है। सकल सृष्टि का राजा दुखिया लिख कर दे दिया शास्त्र में कि संसार में कोई सुखी हो ही नहीं सकता, ये संसार सुखी होने की जगह नहीं है। इसलिए आप जब किसी भी व्यक्ति के बारे में सोचते हो तो वो आपके दुख का कारण बनता है। इसलिए याद यदि करना है, भगवान कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कार्येषु माम अनुस्मरण। तुम चाहे कुछ भी कर रहे हो, कार्य आपको कभी भी परेशान नहीं करता है। कार्य आपका कोई भी होता है वो आपको डिस्टर्ब नहीं करता है, आपको परेशान नहीं करता है। लेकिन कार्य के बाद, कार्य के टाइम पर आपकी बुद्धि क्या सोच रही है, आपके मन में किसके विषय में विचार आता है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रैक्टिस हमेशा करनी चाहिए कि मैं तस्मात् सर्वेषु कार्येषु माम अनुस्मर युद्ध जा। भगवान ने कहा पहले मुझे याद करो फिर कार्य करो। जब तुम मुझे याद करते हुए कार्य करोगे फिर क्या होगा? फिर कर्मण्येवादी का रस्ते मा फलेषु। तुम जो भी कार्य करोगे तो तुम अपने लिए कर्तव्य तो करोगे, फिर तुम्हें फल के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। क्योंकि हम भगवान को याद करते हुए कोई भी कार्य करेंगे तो क्या लगेगा? भगवान अच्छा करेगा, भगवान कृपा करेंगे। क्योंकि अगर भगवान को निकाल दो फिर चाहे सरल से सरल कार्य है ना, वो भी हमारे लिए दुखदायक बन जाएगा। क्योंकि संसार का स्मरण करते हुए मन को एक ही काम आता है, मन को लगना आता है। मन लग गया, मेरा दिल लग गया उस पर, मेरा मन लग गया, मन को लगना ही आता है। अगर दुनिया में लगेगा तो दुख देगा, भगवान में लगेगा तो आनंद देगा। इसलिए भगवान का स्वरूप कैसा है? सच्चित आनंद। और सच्चित आनंद है भगवान का स्वरूप, सच्चित आनंद रूपाय। और वो कार्य क्या करता है यहाँ पर बताया, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादि तरतः। जन्म देता है प्रत्येक जीवों को, उत्पन्न करता है, सारे जीवों की पालना करता है और अंत में सबका विनाश करता है, ये भगवान का कार्य है। विश्वोत्पत्यादि हेतवे के भगवान का कार्य क्या है कि संसार में जितने भी जीव हैं उनको बारंबार जन्म देना, ये भगवान की सबसे बड़ी कृपा है। हमको लगेगा ना कि भगवान क्यों बार बार संसार में भेजते हैं, इच्छा हमारी है, हमारी अपनी इच्छाओं के कारण हमको संसार में आना पड़ता है, और ये भगवान की कृपा है कि हमको हमारी इच्छाओं के अनुसार जन्म देते हैं, जैसी हमने इच्छा की है वैसी जैसी योनियों में, और फिर सर्कल घूमने के बाद भगवान इतनी कृपा करते हैं कि फिर मनुष्य देह प्रदान करते हैं, फिर से चांस मिलता है कि आप नाम जप कर सकते हो, आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो। ये मनुष्य देह ये स्पेशल मिला है, भगवान तो हमारी इच्छाओं के अनुसार 84 लाख योनियों में जिसकी जैसी भी इच्छा है, चाहे खाने की इच्छा है, घूमने की इच्छा है, तैरने की इच्छा है, फ्लाई करने की इच्छा है, उसके अनुसार जन्म मिलता है। लेकिन भगवान ने ये रूल बनाया है कि जब 84 लाख योनियों में भुगतते भुगतते तुम्हारी सारी इच्छाओं के अनुसार तुमको जन्म दे दिया जाएगा, उसके बाद मैं अपनी कृपा करूंगा और तुम्हें मनुष्य बनाऊंगा जिसमें तुम्हें मौका दूंगा कि तुम दोबारा से मुझे प्राप्त कर सकते हो। और भगवान क्या करते हैं, विश्वोत्पत्यादि हेतवे, भगवान का कार्य ये है जन्म देना, पालन करना, और उसका स्वभाव कैसा है, भगवान कैसे हैं, स्वभाव कैसा है। भगवान ऐसा स्वभाव है कि ताप त्रयों विनाशाय, जितने भी जीव के दुख हैं उनको खत्म करने का भगवान की इच्छा ये रहती है कि मैं कैसे आपके दुखों को दूर करूं। जीव के जीवन में 3 प्रकार के दुख होते हैं, आदिदैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। आदिदैविक जो देवताओं के द्वारा मिलते हैं, जैसे अतिवृष्टि हो जाना, बहुत तेज गर्मी आ जाना, बहुत कभी भूकंप आ जाता है, जिलजिला आ जाता है या सुनामी आ जाता है, आदिदैविक कष्ट होते हैं। आदि भौतिक कष्ट वो होते हैं जो अलग अलग प्राणियों से मिलते हैं, जो दूसरे जीवों से मिलते हैं। पहले जमाने में जानवरों से मिलते थे, किसी को सांप डस देता था, किसी को शेर खा जाता था, और आजकल तो आचार्य कहते हैं कि मनुष्यों से ज्यादा और कोई दुखी नहीं करता, जानवर अब हमें दुखी नहीं करते। जानवर तो अब तो हम फ्लैट्स में रहते ना, जानवर कहाँ आते हैं हमारे घर में। जो मनुष्य है ना वो मनुष्य दूसरों को दुखी करते हैं। हम लोग जो ताला लगा के सोते हैं ना, लॉक करके सोते हैं, ये जानवर कभी भी है ना, जानवर के लिए ताला लगाने की जरूरत नहीं, खाली सिंपल अगर बंद कर देंगे तो कोई जानवर खोलेगा क्या, कुत्ता के खोलेगा, कोई नहीं खोलेगा। ये तो हमें पता है कि हमारा घर अगर खुला होगा तो अगर किसी मनुष्य को पता गया, नीचे गाड़ी होती ना, गाड़ी लॉक करके आते हैं, किसके डर से, मनुष्यों के डर से ना। और मनुष्य भी दूसरे तो दुख देते देखते हैं, उससे भी ज्यादा दुख जो है ना वो हमारे अपने क्लोज जो होते हैं उससे ज्यादा दुखी होते हैं, अपनों से ज्यादा दुखी होते हैं हम लोग। तो भगवान का स्मरण करने से क्या होता है, आदि दैविक दुख भी दूर हो जाते हैं जो देवताओं के द्वारा मिलते हैं, आदि भौतिक जो दूसरे प्राणियों से मिलते हैं, और आध्यात्मिक, आध्यात्मिक कष्ट क्या है, जो हम स्वयं खुद को देते हैं। आध्यात्मिक सोचते हैं पहले मेरे साथ ऐसा हुआ था, ये सोचकर दुखी होते हैं, या भगवान न करे ऐसा हो जाए ये सोचकर दुखी होते हैं, ऐसा हो गया, उसने मुझे ऐसा बोला था, मैंने तो उसके साथ कुछ बुरा नहीं किया, फिर भी उसने मेरे साथ बुरा किया, ऐसे सोच सोच कर कभी रोते हैं, ऐसा क्यों हो गया, वो मेरे साथ रहता था, फिर मैंने तो उसके साथ अच्छा किया फिर भी मेरे साथ बुरा किया, कभी ये सोचकर। फिर कभी कभी ऐसा होता है हमारे पास कुछ अच्छा होता है लेकिन भयभीत होते कहीं ये मुझसे छीन न जाए, तो पहले का शोक का भय ये हमें हृदय में हमेशा टेंशन देता है। टेंशन पता है किस बात की होती है, टेंशन जो हुआ नहीं होता उसकी होती है, हुआ ही नहीं है, जब होगा तब देखा जाएगा। लोग वैसे ही टेंशन में पहली बीमारियों घटनाएं एंड टेंशन करे करे वध बीमार देना है। लेकिन भगवान का स्वभाव क्या है, ताप त्रयोन विनाशाय, वो तीनों तापों को हरण करने वाले हैं और सर्वज्ञ है भगवान। जन्मादस्य यतोन वयादि तरत चातेषु विज्ञः, विज्ञः मतलब वो सब जानते हैं। भगवान के बारे में अगर 3 चीजों की हकीकत हमें पता चल जाए तो जीना बहुत सरल हो जाएगा। एक वो कि वो सब जानते हैं, सर्वज्ञ है, उसको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, भगवान को सब पता है। क्यों पता है? क्योंकि वो रहते कहाँ हैं? हर एक के हृदय में रहते हैं, हृदय में रहते हैं। आप जो अच्छा करोगे या कोई पाप करोगे, आपके जीवन में अच्छा हो गया है या पाप गलत हो गया है, उसको बताने की जरूरत नहीं है, वो सर्वज्ञ है, पता है उसको। और दूसरा, वो सर्वज्ञ है, साथ में वो सर्वशक्तिमान है। तीन हकीकत है भगवान की। वो याद रखने से जीना बहुत सरल हो जाएगा। एक तो उसको सब कुछ पता है, मेरे साथ क्या हुआ था, मेरे साथ क्या होने वाला है, मेरे साथ क्या हो रहा है, मैंने क्या किया था, मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या भविष्य में करने वाली हूँ, वो सब पता है। दूसरा, वो सर्वशक्तिमान है। अगर वो जानते हैं और मैं उनसे कृपा की याचना करूंगी तो अवश्य वो मुझ पर करुणा करेंगे। वो सर्वशक्तिमान है, वो नियम को बदल भी सकते हैं, वो हमारे जीवन में आने वाले संकटों को खत्म भी कर सकते हैं। सर्वशक्तिमान है। अगर हम उनकी शरण में आएंगे, भगवान कहते हैं अगर आप मेरी शरण में आओगे तो अहम तो हम सर्व पापे भी हो, जितने पाप तुमने किए मैं उन्हें सारे पापों को समाप्त कर दूंगा। दुख क्यों मिलता है? दुख इसलिए मिलता है कि जीव ने पाप किए हैं, वरना ब्रह्मा जी को आपके भाग्य में लिखने का, दुख लिखने का कोई अधिकार नहीं है। जीवन में जो बीमारी आती है, जो दुख आता है, जो संकट आता है, जो प्रॉब्लम आता है, वो हमारे अपने कर्मों के अनुसार, जो भी आपके जीवन में आया है, सामने जो आपको दुख दे रहा है, हमको कभी कभी लगता है कि दुख किसी व्यक्ति के कारण मिल रहा है, कभी कभी दिखता है ना, वो मेरे दुख का कारण है, वो मेरे दुख, वास्तव में वो व्यक्ति आपके दुख का कारण नहीं है, वो आपके कर्म है जिसने उस व्यक्ति का स्वरूप धारण किया है। वो हमारे ही कर्म है जो कि हमें दुखी, किसी की मजाल नहीं है कि किसी चींटी को भी दुख दे सके, लेकिन हमारे अपने कर्मों के अनुसार हमें दुख मिलते हैं। और भगवान कहते हैं आपके सारे कर्मों को समाप्त करने की शक्ति है मुझमें, अहम त्वम सर्व पापे भी, मैं तुम्हारे सारे पापों को खत्म कर लूंगा और तुम्हें अपने धाम में लेके जाऊंगा। इसलिए एक तो भगवान सर्वज्ञ हैं, उनको सब पता है, दूसरा सर्वशक्तिमान है, वो सब कर सकते हैं, और तीसरा भगवान परम करुणामयी है, उनको एक ही काम आता है। वो अगर करेंगे, कोई जीव उनके शरण में आएगा तो उनको कृपा ही मिलेगी, करुणा ही मिलेगी। तो जीव की सबसे बड़ी बुद्धिमानी एक ही है कि हम पूर्ण रूप में भगवान को सरेंडर करें। और भगवान यहाँ पर वेदव्यास जी कहते हैं तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, कि आप तो वो हो जिन्होंने आदि जीव ब्रह्मा को हृदय में ज्ञान दिया। ज्ञान प्राप्त करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, भगवान यदि कृपा करे तो केवल भगवान का स्मरण करने से ज्ञान आ जाता है। भगवान भगवदगीता 10.10 में कहते हैं तेषां सकल युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये नमा उपयांति थे, जो प्रेम से मेरा भजन करते हैं उनको मैं ऐसी बुद्धि देता हूँ जिससे वो मुझे प्राप्त कर लेते हैं। और उसके बाद ये कहते हैं तेजो वारी मेदाम मिर्जा यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना, यहाँ संसार में जो कुछ भी है वो हमको हमको ऐसा लगता है वो हमको छलने वाला है। जैसे कभी कभी ऐसा होता है हम जो कुछ देते हैं ना, मोहयन्ति यत् सूरयः, बड़े बड़े देवी देवता भी भगवान की माया को देखकर परेशान हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं। ब्रह्मा वो भी भगवान को देखकर मोहित हो जाते हैं, इंद्र वो भी भगवान को नहीं पहचान सकते। भगवान जब इस भौतिक जगत में आते हैं वो ऐसी लीलाएं करते हैं कि देवता भी उनको समझ नहीं पाते हैं और स्वीकार नहीं करते कि वो भगवान है। इंद्र ने कभी स्वीकार नहीं किया था, तभी तो उन्होंने इतनी वर्षा की थी। अगर वो स्वीकार करते कि कृष्ण भगवान है तो क्या उनके साथ इस तरह से कंपटीशन करते थे? ब्रह्मा जी ने भी स्वीकार नहीं किया, वो ब्रह्मा जो खुद गए थे पृथ्वी देवी को लेकर भगवान के पास कि आप संसार में अवतार लीजिए, वो भगवान की लीला को देखकर वो ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए। इसका मतलब ये है कि भगवान की जो लीलाएं हैं उसको देखकर हम सब मोहित हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ब्रह्मा और इंद्र भी यदि कृष्ण स्वीकार नहीं कर रहे तो हमारे जैसा कोई मूर्ख अगर बोलता है कि भगवान नहीं है कृष्ण, या मुझे कृष्ण पे भरोसा नहीं है, या कृष्ण कैसे भगवान हो सकते, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो बड़े बड़े देवी देवता भी नहीं समझ सके, जिनको बड़े बड़े शास्त्र पता। वो ब्रह्मा जी जिनको हृदय में ज्ञान किसने दिया, साक्षात भगवान जिनके गुरु हैं, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। वो ब्रह्मा जी भी अगर भ्रमित हो जाते हैं भगवान की लीलाओं को देखकर, तो हम जैसे कीड़े मकोड़े अगर भगवान को स्वीकार नहीं करते हैं तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन आगे कहते हैं, वो भगवान सदैव अपने धाम में रहते हैं। धामना स्वयं सदा निरस्त कुवकम सत्यम परम धीमहि। इस श्लोक में सत्यम परम भगवान को कहा गया। सारे शास्त्र को खोजने के बाद पता चला वो सत्य कौन है, कृष्ण ही सत्य है। ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिद आनंद विग्रह। सच्चिद आनंद विग्रह कौन है, कृष्ण है। ब्रह्मा जी ने स्वीकार किया कि सत कृष्ण है। और उसके अतिरिक्त शिव जी ने, पार्वती ने पूछा कि महादेव ये जो सत्य लिखा हुआ है वो सत्य कौन है। तभी वेदव्यास जी सत्य को प्रणाम कर रहे हैं तो सत्य कौन है। तभी उमा जो शिव जी की पत्नी है, उमा महारानी, वो कहती है, उनको कहते हुए शिव जी कहते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना सत्य हरि भजन जगत सब सपना। वो हरि कृष्ण जो है उनका भजन जो करता है वही भगवान जो है वो सत्य है, इसके अतिरिक्त और जगत सारा सपना है। और इसके अतिरिक्त इसी भागवतम में 18,000 श्लोक है। पहले श्लोक में ये बताया गया कि सत्य को प्रणाम कर रहा हूँ, परम सत्य, सत्य परम धीमहि, परम सत्य को प्रणाम करता हूँ। और 18,000 श्लोक करने के बाद अंतिम श्लोक में बताते हुए कहते हैं, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरिं परम। वो परम सत्य हरि ही सत्य है जिनके नाम संकीर्तनम यस्य, जिनके केवल नाम संकीर्तन करने से सर्व पाप प्रणाशनम सारे पाप समाप्त हो जाते हैं, प्रणामो दुख शमनम खाली उनकी शरण में आ जाएंगे तो हमारे सारे दुखों का नाश हो जाएगा, तब नमामि हरिम परम, वही हरि परम सत्य है। तो यहाँ पर पहले श्लोक में तो भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया, और श्रीमद् भागवतम के 10वें श्लोक में बताया, 10वें अध्याय में 10वें सिकंद में ये बताया जाता है, जब सारे देवी देवता भगवान का दर्शन करने के लिए आते हैं, जब गर्भ में भगवान होते हैं गर्भ स्तुति करने के लिए आते हैं, तब कृष्ण को गर्भ स्तुति के टाइम पर जो श्लोक उच्चारण करते हैं उसमें कृष्ण 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 कहकर नहीं, सत्य 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 कहकर उनकी प्रशंसा करते हैं कि आप सत्य हो, सत्य प्रतिष्ठितम कृष्ण कृष्ण सत्यम प्रतिष्ठते, कि कृष्ण आप ही परम सत्य हो, आपके अतिरिक्त और जो कुछ भी है वो सब समाप्त हो जाने वाला है। तो पहले श्लोक में भगवान कृष्ण को प्रणाम किया, और दूसरे श्लोक में वस्तु निर्देश कि कौन सी वस्तु में भागवतम में देने वाला हूँ, उसके लिए वेद व्यास कहते हैं, धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मचराणम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परे रीश्वरे सद्योरित्यवरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणा। कि ये भागवतम ऐसा है, धर्म प्रोजित कैतवोत परमो, इसके अंदर कोई कैतव नहीं है, कोई धोखेबाजी नहीं है। धोखा तो वेदों में किया गया है, शास्त्रों में ऐसा बताया गया, जो भी वेद आप खोलते हो, जो पुराण आप खोलते हो, आपको भ्रमित करता है। कोई शिव पुराण पढ़ेगा तो क्या समझेगा कि शिव ही भगवान है। कोई देवी पुराण पढ़ेगा तो क्या सोचेगा कि देवी ही भगवान है। इस तरह से जो भी वेद और शास्त्र हैं उसमें एक तो भ्रमित किया गया है, वेद व्यास जी स्वयं कहते हैं कि मुझसे ये अपराध हो गया है, और उसके अलावा जो भी वेद और शास्त्र जो हैं उनमें क्या बताया गया, स्वर्ग की बहुत ज्यादा महत्व, बहुत ज्यादा प्रशंसा बताई गई। इसलिए बहुत समय तक जब तक श्री प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य नहीं बताए थे, जब तक श्री प्रभुपाद जी के ग्रंथ यहाँ पर नहीं थे, तब तक लोगों को पता ही नहीं था कि स्वर्ग के अलावा भी कोई जगह है जहाँ पर जाना चाहिए। हम लोग कब हमारे जब भी कोई मृत्यु हो जाती है तो क्या लिखते हैं, स्वर्गवासी लिखते हैं। कभी कोई किसी ने लिखा वैकुंठवासी, कभी नहीं लिखते हैं, क्योंकि हमको पता ही नहीं। हालांकि गीता में भगवान ने साफ साफ बताया कि स्वर्ग तो वो जगह है कि जहां आप जाओगे तो क्या होगा, क्षीण पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, आपको वापस से वहां से धक्के मार के निकाल दिया जाएगा। जाओ, अब जाओ वापस से पुण्य एकत्रित करो, वापस से वो जगह जहां से आपको वापस पृथ्वी पर आना पड़े, वो जगह ऑस्पिशियस कैसे हो सकती है। वो जगह जहां पर आपको एक दफा आप जाओ, किराए का दर किसी को पसंद है कि जहां पर 11 महीने तो एग्रीमेंट हो आपका और 11 महीने के बाद आपको बोरिया बिस्तर निकाल के दूसरे घर में जाना पड़े, फिर वहां पर जाओ, वहां पर वापस पैसे जमा करो, वापस आओ वहां पर, ऐसा तो कोई नहीं चाहेगा। हर कोई चाहता है ना कि हमको परमानेंट आनंद मिले। स्वर्ग तो ऐसी जगह है ही नहीं जहां पर आपको परमानेंट रहना पड़ेगा। इसलिए ये जो श्रीमद् भागवतम है उसके लिए कह रहे हैं कि इसमें मैंने कोई भी कपट नहीं रखा है, इसमें सिर्फ ऐसे भगवान की लीलाओं के विषय में बताया है जिसके विषय में आप सुनोगे तो आपको भगवान से प्यार हो जाएगा, और जब आपको भगवान से प्यार हो जाएगा तो क्या होगा, तो आप भगवान को स्मरण करोगे, आप याद उसी को करते। कभी कभी लोग बोलते हैं कि हम नाम जप करते हैं तो भी मन हमारा नाम जप में नहीं लगता। बहुत सारे लोगों का ऐसा सवाल होता है कि नाम जप करते हुए भी मन नहीं लगता, मन कहीं और जाता है। इसका कारण क्या है, प्रेम किसी और से करते हो, है ना। मन वही लगता है जिससे आप प्रेम करते हो। जैसे आप नाम जप करते हो, बच्चा अगर सो रहा होता है किसी माँ का और उसको पता है कि वो उठ रहा है, आवाज निकली तो क्या करेगा, वो माला उधर रह जाए, बच्चा कहीं गिर ना जाए, ऐसा लगेगा तो, क्योंकि प्रेम उससे है ना। तो प्रेम जो हम करते हैं ना जिससे, उसी को स्मरण करते हैं। लेकिन जब हम भागवतम श्रवण करते हैं तो हमें भगवान से प्यार हो जाता है। फिर जब हम प्यार हो जाता है तो भगवान को स्मरण करना बहुत आसान हो जाता है, और जब हम भगवान को स्मरण करते हैं तो भगवान को प्राप्त करना सरल हो जाता है। इसलिए इसमें कोई कपट नहीं है। और वेद्यम वास्तव मात्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन मूलनम, ये भागवत ऐसा है जो आपके सारे ताप को समाप्त कर देगा। और वेदव्यास जी कहते हैं कि मैंने पहले तो बहुत सारे शास्त्र लिखे, लेकिन वो बहुत सारे शास्त्र लिखने के बाद मैं एक कंक्लूजन देता हूँ श्रीमद् भागवतम के स्वरूप में। जैसे कोई साइंटिस्ट हो, पहले एक है ना फॉर्मूला बताता है, फिर बोलता नहीं इसमें थोड़ा सा और भी अच्छा एडवांस करके दूसरा फॉर्मूला बताता है, फिर तीसरा, ऐसे करते करते बहुत सारे फॉर्मूला बताने के बाद एक लास्ट में बोलता है दिस इज द फाइनल फॉर्मूला, ये फाइनल है, इसके बाद और कुछ मैं बताने वाला नहीं हूँ, ये सबसे ज्यादा परफेक्ट है। इसमें बताया गया श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंवा परेश्वर, कि और कोई शास्त्र पढ़ने की जरूरत क्या है, क्योंकि ये लास्ट फॉर्मूला है, ये सबसे ज्यादा एडवांस है, इस किंवा परे और कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। क्यों, इसमें ऐसा क्या है, तो बताते हैं सद्यो हृदय वरुद्य तेत कृति भी शुश्रूषु बेस्तत् क्षणा, खाली आप इस भागवतम को सच्चे दिल से पढ़ने की इच्छा करो। कोई इच्छा भी करता है ना तो क्या होता है, सद्यो उसी टाइम इंस्टेंट हृदय वरुद्यते, हृदय के अंदर भगवान आकर बैठ जाते हैं, भगवान आकर कैद हो जाते हैं जो श्रीमद् भागवतम को पढ़ने की खाली इच्छा करता है। और जो पढ़ेगा, जो प्रेम से श्रवण करेगा, उसका तो कहना ही क्या। उसके बाद कहते हैं कि इतना सुंदर ग्रंथ है जिसके अंदर सब कुछ है, तो आपको क्या करना चाहिए? निगम कल्प तरुर्गलितं फलम् शुकमुखादामृतत्रसंयुतम् पिबत भागवतम् रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावका। निगम कल्प तरु के जितने भी वेद और शास्त्र हैं वो एक वृक्ष है, और वृक्ष के अंदर खाने के योग्य क्या होता है? वृक्ष के अंदर तना भी होता है, पत्ते भी होते हैं, टहनिया भी होता है, कांटे भी होते हैं, लेकिन खाया क्या जाता है? फल खाया जाता है। तो ये सारे वेद जो है वो वृक्ष के समान है, और इनका पका हुआ फल श्रीमद् भागवतम है। तो क्या करना है? निगम कल्पतरु गलितम फलम, और गलित है बिल्कुल सॉफ्ट हो गया, अभी बिल्कुल पक गया है। तो मानो वो कहे, कोई बोले कि भाई पका हुआ फल अगर वृक्ष से गिरेगा तो फट जाएगा, और फट जाएगा तो वो धूल से दूषित हो जाएगा। बोला नहीं, ये फटा नहीं है, गिरा नहीं है, बल्कि परंपरा के द्वारा आया है। पहले ये भागवतम भगवान ने, भगवान श्री हरि ने सबसे पहले नारद मुनि को सुनाया, नारद मुनि ने वेद व्यास जी को बताया, वेद व्यास जी ने सुखदेव गोस्वामी को बताया। इस तरह से ये परंपरा से बहुत ही प्रेम से एक दूसरे को दिया गया। और जब सुखदेव गोस्वामी ने, सुखदेव शुक कहते हैं तोते को, और ऐसा बताया जाता है कि तोता जो होता है वो अगर किसी फल को चोंच मारता है तो वो फल बहुत मीठा हो जाता है। या फिर ऐसा होता होगा कि तोता जो है उसके अंदर ऐसा ज्ञान होता है कि उसको पता होता है कि ये फल बहुत मीठा है, उसी को वो चोंच मारता है। जो भी हो, लेकिन जिस पे तोते की चोंच लगी हुई होती है ना, वो फल बहुत मीठा होता है। शुक मुखात अमृत द्रव संयुतम, वेद व्यास जी ने तो गुलाब जामुन बना दिए थे। जब कभी हम गुलाब जामुन बनाते ना, तो गुलाब जामुन में मिठास होती है क्या? मिठास गुलाब जामुन में नहीं होती है। मिठास किस में होती है? चाशनी के अंदर जब उसको डिप करते ना, तब वो मीठा बनता है। तो उसी तरह से वेद व्यास जी ने तो शास्त्र लिख दिए, उसके अंदर मिठास तो तब आई जब शुक रूपी मिट्टू ने उसके ऊपर चोंच मारी है। और इसे कहते हैं शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम। तो बोला कि ये तो फल है, और फल के अंदर तो दो चीजें त्याग करने के योग्य होती है, एक तो उसका छिलका होता है जो हमको फेंकना पड़ता है, और दूसरा गुटली होती है। लेकिन ये वेद व्यास जी फिर अपनी गलती को सुधारते हुए कहते हैं कि मुझसे तो गलती हो गई, जो मैंने इसको फल कहा, वास्तव में ये फल नहीं है, ये तो जूस है। जूस में कुछ त्याग करने के योग्य नहीं होता, वो तो बस घट करके पी जाना होता है। इसलिए पिबत भागवतम रसमालयम, ये तो रस से भरा हुआ है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि हमको त्याग करना पड़े। और फिर पूछा जाए कि कब पढ़ा जाए। कभी कभी लोग के मन में आता है भागवत तो हमने पढ़ लिया है, मैंने तो ये कृष्ण कथा, पूतना वध, शक्तासुर का वध, ये माखन चोरी लीला, ये दामोदर लीला तो मैंने सब कुछ सुनी हुई है, मैंने तो, मुझे तो ये सब पहले से पता है, तो फिर मैं कितनी दफा सुनूं, बार बार क्या सुने। तो ये भागवत ऐसा है, पीवत भागवतम रसमालयम, जितना मरते दम तक सुनो, जब तक जिंदा हो तब तक ये भागवत सुनो। सुनने का मतलब क्या है? एक तो हम इन्फॉर्मेशन के लिए सुनते हैं, है ना, कि हमें पता चल जाए कि इसमें क्या लिखा हुआ। ये भागवत इन्फॉर्मेशन के लिए नहीं होती है। एक तो देखो, संसार भी सागर है और भागवतम भी एक सागर है। संसार के सागर में यदि आपको पार उतरना है तो आपको क्या आना चाहिए? तैरना आना चाहिए। जिसको तैरना आएगा वही पार उतर सकता है। और भागवतम का सागर कैसा है? भागवत के सागर में यदि आपको पार उतरना है तो आपको डूबना आना चाहिए। जिसको डूबना आता है ना इसके अंदर, वही पार हो सकता है। तो जितना जितना हो सके डूब के, हमको कभी लीला जब सुनने को मिले भगवान की, तो ऐसे नहीं कि मैं यहाँ पृथ्वी पर बैठी हूँ और भगवान की लीला वृंदावन में हो रही है, ऐसे सुनने से कभी लाभ नहीं होगा। हमको भी उस लीला का एक पार्ट बनकर वृंदावन में जाना पड़ेगा। मैं भी वही वृंदावन में हूँ जहाँ यशोदा मैया कृष्ण को रस्सी से बांध रही है, मैं भी अपने घर से एक रस्सी लेके आती हूँ, क्योंकि मैया मेरी रस्सी को भी भगवान को बांधने के उपयोग में लगाए। जब हम उस स्थिति में सुनते हैं तभी हमको वास्तव में लाभ मिलता है। जब हम प्रहलाद की कथा सुनते हैं तो हमको लगता है हाँ प्रहलाद के ऊपर बहुत सारे कष्ट है, उसने हरि का नाम लिया और सारे कष्टों से पार हो गया। ये तो केवल इन्फॉर्मेशन है, लेकिन जब मुझे ये लगे कि हाँ जब वो भगवान प्रहलाद के बुलाने पर उसके सारे संकट को दूर कर सकता है तो वो भगवान तो मेरा भी उतना ही है जितना कि वो प्रहलाद का है। उतनी श्रद्धा जितनी प्रहलाद की भगवान के अंदर है कि वो बोलता है कि इस पत्थर इस स्तंभ में भी भगवान है और भगवान उससे प्रकट हो जाते हैं तो मेरे बुलाने पर क्यों नहीं आएंगे। मैं भी अगर बोलता हूँ कि इस विग्रह में भगवान है तो भगवान है उसके अंदर और वो मुझे भी बचाने के लिए अवश्य आएंगे। जब तक इस स्थिति में नहीं आते हो तब तक सुनते रहो सुनते रहो। ये भागवत सुनने की वस्तु है। उसके बाद इतना सुनाने के बाद ये मंगलाचरण करने के बाद वेद व्यास जी हमको नैमिषारण्य तीर्थ पे लेके जाते हैं। नैमिषारण्य तीर्थ वह जगह है जहाँ पर जैसे कलयुग आ जाता है तो सारे ऋषि मुनि जो हैं वो ब्रह्मा के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी से कहते हैं ब्रह्मा जी हमें कोई ऐसी स्थान के विषय में बताइए जहाँ पर कलयुग का आक्रमण ना हो। ऐसी जगह जहाँ पर कलयुग का आगमन ना हो तो कौन सी जगह है जहाँ पर बैठ के हम आसानी से साधना कर सके। ब्रह्मा जी क्या करते हैं उनको एक चक्र देते हैं। चक्र को ऐसे बोलते हैं मैं ये चक्र को फेंकता हूँ जहाँ पर ये चक्र गिरेगा आप समझना ये वो स्थान है जहाँ पर कलयुग का प्रभाव नहीं है। तो ब्रह्मा जी चक्र को फेंकते हैं और घूमते 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 चक्र नैमिषारण्य तीर्थ पे आकर गिर जाता है जिससे वो 88,000 ऋषि सोचते हैं कि इस जगह पर उस जगह पर कलयुग का कोई प्रभाव नहीं है। फिर 88,000 ऋषि जो है वो एक बहुत बड़ा यज्ञ कुंड लगाते हैं और वहाँ पर सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र समागता सत्रम स्वर्गाय लोकाय वहाँ पर 1,000 वर्ष के लिए यज्ञ करना शुरू करते हैं। वैसे तो कलयुग में जीव की आयु 100 साल है लेकिन वो जानते हैं कि यहाँ पर तो कलयुग का प्रभाव नहीं है तो 1,000 वर्ष तक चलने वाला यज्ञ वो प्रारंभ करते हैं। रोज सुबह को उठते हैं और फिर आहुतियां शुरू हो जाती है प्रभात के समय में। लेकिन एक दफा क्या होता है तो एकदा तो मुनय प्रातर हुत हुताग्नय सत्कृतम सूतमासीनम प्रपच्च रुदमाद। एक बार क्या हुआ कि वो बैठे हुए होते यज्ञ कर रहे हैं अचानक से अभी यज्ञ के बारे में जब किसी को पता चलता है कि 1,000 साल तक चलने वाला यज्ञ है तो जितने भी ऋषि मुनि संत भक्त जो हैं वो उधर आते हैं जमा होते जाते हैं। तो एक दफा वहां पर कौन आते हैं सूत गोस्वामी। एकदा तो मुनय सत्कृतम सूतम आसीनम सूत गोस्वामी आते हैं वहां पर। सूत गोस्वामी कौन है सूत गोस्वामी उग्र शर्वा के पुत्र है रोम हर्षण उग्र शर्वा उनके तो वो कौन है रोम हर्षण के पुत्र हैं। वो एक ऐसे वक्ता हैं प्रवचन करते हैं जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि थे उनको प्रवचन करने के लिए रोम हर्षण को मतलब बताया गया था कि ये रोम हर्षण जो है वो ही सबको ज्ञान प्रदान करेंगे। वही सारे शास्त्रों को जानते थे जितने 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण उनको याद थे। तो एक बार क्या हुआ रोम हर्षण जी कथा कर रहे थे वहां पर बलराम जी आए। बलराम जी आदि गुरु हैं लेकिन वो कथा कर रहे थे तो बलराम जी को प्रणाम नहीं किया। बलराम जी ने कहा तुम तो वक्ता हो और तुम्हारे अंदर इतना घमंड है कि मेरे आने पर मुझे प्रणाम भी नहीं किया तो तुम तो कथा करने के योग्य नहीं हो। जैसा आचरण करोगे ना वैसे ही तो तुम्हारा अगर आचरण अच्छा नहीं होगा तो तुमसे लोग सीखेंगे कैसे। जैसे मैं यहाँ कथा करूँ और मैं आपको बोलूँ भाई सुबह सवेरे उठना चाहिए भगवान का नाम जप करना चाहिए भगवान को प्रसाद भोग लगाना चाहिए और मैं वो सब कार्य नहीं करूंगी तो आपको असर नहीं होगा ना। असर तो तब होगा जब प्रैक्टिकली मेरे जीवन में है। मैं बोलूं भाई क्रोध नहीं करना चाहिए कभी भी क्रोध तो नरक का रास्ता है और मैं खुद क्रोध कर रही हूँ। मैं बोलूं भाई भौतिक इच्छाएं नहीं करनी चाहिए और खुद मेरे अंदर बहुत सारी इच्छाएं तो लाभ तो होगा नहीं। तो बलराम जी ने कहा आपको तो बड़ों का आदर करना नहीं आता है तो आप दूसरों को क्या सिखाओगे। तो बलराम जी ने एक तिनका मारा और उस तिनके से ही रोम हर्षण जी की मृत्यु हो गई। अभी सारे जितने भी भक्त बैठे हुए थे संत जन, उन्होंने कहा आपने इसको तो मार दिया, चलो ठीक है इसको सबक दिया, लेकिन अब हमको कथा कौन सुनाएगा? बेचारे फिर हमको कथा तो सुनाते थे ना, अब कथा कौन सुनाएगा? तो रोम हर्षण जी के पुत्र थे जिनका नाम था उग्रश्रवा, उनको उन्होंने आशीर्वाद दिया। बलराम जी के हृदय में सारा ज्ञान, उन्होंने आशीर्वाद दिया, बोला चार वेद, छह शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद, जितने भी शास्त्र हैं उन सबको बगैर पढ़े हुए सारे जो है ना शास्त्र, वो आपको बाई हाथ याद होंगे, वो आपको कंठस्थ होंगे सारे श्लोक सारे मंत्रास। तो उतने सारा उतना बड़ा आशीर्वाद प्राप्त किया उसने। और उसके अलावा जब परीक्षित महाराज को, परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को कथा सुन रहे थे, सुना रहे थे, तो उस समय गंगा के तट पर वो सूत गोस्वामी, ये जो रोम हर्षण है उनके पुत्र उग्रश्रवा, उनका नाम दूसरा सूत है। सूत बस असल में जाति होती है, जैसे अगर कोई शर्मा होता है तो वो नाम नहीं होता, जाति होती। तो सूत गोस्वामी जो है ना वो बहुत पीछे बैठे हुए थे, वो कथा सुन रहे थे, तो उनको सुखदेव गोस्वामी ने बुलाया, बोला सूत गोस्वामी आप इधर आइए मेरे पास बैठे। परीक्षित महाराज यहाँ पर बैठे हुए थे और यहाँ पर सूत गोस्वामी को बैठाया, बोला अभी तो मैं परीक्षित महाराज को कथा सुना रहा हूँ, तो नेक्स्ट टाइम आपको ये कथा सुनानी है 88,000 ऋषियों को। तो ये 88,000 ऋषि क्या कर रहे थे? यज्ञ कर रहे थे। उस समय सूत गोस्वामी आ गए और सूत गोस्वामी को देखकर सारे इतने प्रसन्न हुए, एक अच्छा सा आसन लगाया, उसको वहां पर बिठाया, बोला आप बैठे यहाँ पर और कथा कीजिए, अब हमें कथा सुनाइए। प्रपच्छ इदम आदरात, बहुत ही आदर से उनसे प्रश्न पूछने लगे। तो उन्होंने पहले तो बोला सूत गोस्वामी ने कि देखो आप लोग सब क्यों आए हो यहाँ पर यज्ञ करने के लिए, तो आप लोग यज्ञ करो, यज्ञ अच्छा काम होता है, यज्ञ करने से भी तो भगवान प्रसन्न होते हैं, तो आप क्यों बोल रहे हो कथा सुन? सब लोग मेंटली प्रिपेयर्ड, अभी देखो यहाँ पर आप लोग क्यों आए हो? कथा सुनने के लिए आओ ना, आपको पता है भागवत कथा होने वाली है, मेंटली प्रिपेयर्ड होके आए कि आपको क्या करना है, भागवत कथा सुनना, लेकिन आप लोग यहाँ पर आओ, भागवत कथा हो ही नहीं, यहाँ पर कुछ और हो रहा होता है, तो आपको लगेगा यार हम लोग तो भागवत कथा सुनने के लिए आए, ये क्या मनी वालों ने यहाँ पर यज्ञ शुरू कर दिया, यज्ञ के लिए तो हम आए नहीं है। लेकिन इसी तरह सूत गोस्वामी कहते हैं कि आप लोगों ने सबको इन्वाइट तो ये सोच कर करवाया ना कि यहाँ पर यज्ञ होगा, तो फिर है ना मैं कथा कैसे शुरू कर दूं? तभी सारे जो ऋषि मुनि हैं वो कहते हैं ये यज्ञ तो केवल एक बहाना था, जिस बहाने के द्वारा आपको यहाँ पर बुलाना था, हमको पता नहीं आप कहाँ पर, पहले ये नहीं होता था, कॉन्टेक्ट नहीं होते थे किसी के पास, व्हाट्सएप नंबर नहीं होता था किसी का कि भाई आप आ जाइए हम लोग 7 दिन की कथा कर रहे हैं तो आप हमारे पास आके कथा कीजिए, तो होता नहीं था। ऋषि संत तो कहाँ जाके किसी जंगलों में जाकर तपस्या करते थे, तो किसी को बहुत दुर्लभ होता था, बहुत मुश्किल से कोई भक्त का दर्शन होता था जो कि हमको भागवत कथा सुनाए, तो ऐसे आयोजन जंगलों में जाना पड़ता था, घर पे आकर भागवत कथा का कहीं निविदा नहीं। अभी देखो परीक्षित महाराज तो राजा थे ना, परीक्षित महाराज तो पूरे भारतवर्ष के राजा थे, उनको जब भागवतम कथा श्रवण करनी थी तो क्या उन्होंने किसी को फोन नहीं कर सकते थे, भाई आप आ जाइए मेरे को 7 दिन में डेथ होने वाली है, तो सुबह सवेरे रोजाना यहाँ पर कथा करेंगे, बाकी मैं अपना काम इधर देखता रहूंगा। जो हमको कोई बोले भाई 7 दिन के बाद आपको डेथ होने वाली है, तो हम सबसे पहले बोले भाई पहले सेटिंग तो करे बैठा कि किसको कितना देना है, कौन सी चीजें कहाँ रखी हुई है, वो सब पहले कर दूं, उसके बाद है ना मैं आराम से बैठ के कथा सुनूं। तो इधर हमारा इतना छोटा सा घर होता है, इतना छोटा सा परिवार होता है, वो इतने बड़े राजा थे, उनके पास क्या क्या कुछ नहीं था, मतलब पूरा जो पृथ्वी है उसके राजा थे, तो वो सोच सकते थे ना मैं इसका राज्य मैं उसको दे दूं, ये जगह का राज्य उसको दे दूं, घर में इतना धन पड़ा हुआ है, इतनी पत्नियां, ये सब डिस्ट्रीब्यूट भी इधर से करता रहूंगा, सुबह से शाम तक कथा सुनूंगा, लेकिन ये नहीं किया, डायरेक्ट से चले गए सब कुछ छोड़कर, अपने बेटे को बोला ये राज तुम्हारा राज्य, जैसा तुम करना है करो, कल मुझे मरना है, आज से मैं जा रहा हूँ भागवत कथा सुनने के लिए। तो वहां पर उन्होंने बोला कि हमने तो आप चाहते थे कि आप जैसा कोई भक्त आए जो कि हमें भगवान की कथा सुना, इसीलिए ये आयोजन किया है, अब यहाँ पर बैठिए और कथा कीजिए। तो 88,000 ऋषि थे, उन्होंने सोचा दो चार लोग तो मुझे ऐसे बोल रहे हैं कि भाई कथा करो कथा करो, बाकी जो मना मैं पुट्टी बैठी तो भाई शुरू थी अच्छी करे, फिर तो मेरी हानि है, तो पता कैसे चलेगा कि सब चाहते हैं। फिर इतना बड़ा हवन कुंड था, हम सोच सकते हैं हम 8 लोग बैठते हैं हवन कुंड में, दो 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 इस तरह बैठते हैं, तो भी कितना बड़ा हवन कुंड बनाना पड़ता है। जो 88,000 ऋषि बैठे होंगे तो कितना बड़ा हवन कुंड बना होगा ना, कैसे कैसे उन्होंने मैनेज किया होगा। तो वो क्या करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बाल्टियां मिट्टी की लेके आते हैं और फिर उस पूरे हवन कुंड के अंदर पूरी मिट्टी डाल के पूरा बैलेंस बना देते हैं, उसके ऊपर जीले वीले बिछा के बैठ जाते हैं। बोला हवन नहीं करना, यज्ञ नहीं करना, हमको क्या करना है, हमको कथा सुननी, आप कथा कीजिए। और फिर बहुत ही सुंदर रीति से वो भागवतम के प्रथम श्लोक पर, प्रथम अध्याय में वो श्री सूत गोस्वामी से सवाल पूछते हैं कि अभी हम आपसे सवाल पूछेंगे, आप उन सवालों का हमें जवाब दीजिए। तो 6 प्रश्न पूछे जाते हैं, पहले पहला जो सिकंद है उसमें 6 प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न वो पूछते हैं, वे कहते हैं तत्र तत्रंजस आयुष्मन भवता यद्विनिश्चितम पुंसामेकांत श्रेय तन्नम संशितुम अर्हसि, के इस संसार में सब कुछ, सब कोई लोग दुखी है, हर कोई दुखी है। पहला प्रश्न, तो आप हमें ये बताइए कि सारे जीवों का कल्याण कैसे होगा, वो क्या ऐसा करें कि उनके दुख दूर हो जाए, उनका कल्याण हो जाए, ये पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न पूछते हैं भूरि भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः अतः साधोत्र यत्सारम समुद्रित्य मनीषणा ब्रूहि भद्राय भूताना येनात्मा सुप्रसीदति। अब दूसरी बात ये बताइए कि बहुत सारे शास्त्र हैं, कुछ शरीर के बारे में है, किसी को धन नहीं है तो कैसे धन मिलेगा, किसी को पुत्र नहीं है तो कैसे पुत्र मिलेगा, किसी को पत्नी नहीं है तो कैसे मिलेगा, किसी को सुंदरता चाहिए तो कैसे मिलेगी, लेकिन ये सब तो भौतिक शरीर के बारे में है, वो अगर हमको मिल भी जाएंगे तो भी हमें आनंदित तो नहीं करेंगे। जैसे अगर भूख मुझे लगी है और मैं खाना आपको खिलाए जा रही हूँ तो क्या मेरी भूख मिटेगी, खाना तो मुझे खाना पड़ेगा तभी तो मेरी भूख मिटे। उसी तरह से आनंद की अभिलाषा शरीर की है ही नहीं, आनंद की इच्छा शरीर की नहीं है, क्योंकि जब शरीर मर जाता है, आत्मा निकल जाती है, तो मृतिक शरीर कभी कभी कोई आनंद की इच्छा करता है कि मुझे ये वस्तु की इच्छा है, मुझे कभी भी मृतिक शरीर ने कोई डिजायर की है, कोई कामना की है, नहीं ना। तो आनंद की इच्छा किसकी है, आनंद की इच्छा तो आत्मा की है, और हम आनंदित किसको कर रहे हैं, शरीर को, अच्छा खिलाते हैं, अच्छा पहनाते हैं, अच्छा रेस्ट देते हैं, अच्छा मुलायम बिस्तर होना चाहिए और सुंदर ड्रेसेस, ब्रांडेड ड्रेसेस होने चाहिए, अच्छा सा घर होना चाहिए, प्यारी सी गाड़ी होनी चाहिए, एक गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, एक बॉयफ्रेंड होना चाहिए, ये सब शरीर की मांगे हैं। ये तो इन चीजों के द्वारा हम आत्मा को तो खुश नहीं कर सकते। तो पूछते हैं कि आप हमें ये बताएं कि शास्त्रों में कोई ऐसा तरीका बताया गया है ये नात्मा सुप्रसिद्धति, जिससे आत्मा का कल्याण हो जाए। दूसरा सवाल, पहला क्या सवाल था कि सारे जीव दुखी हैं तो उनका कल्याण कैसे हो, दूसरा आत्मा किस चीज से खुश होगी, और तीसरा वो पूछते हैं सूत जानासि भद्रम ते भगवान सात्वताम पति देवक्यम वासुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षिता। सूत जानासि भद्रम ते, पहले तो वो सारे ऋषि मुनि जो है उनको आशीर्वाद देते हैं कि आपका कल्याण हो, भगवान की कृपा आपको भेजा है जो हमको भागवत सुना रहे हो, लेकिन हम आपसे ये पूछते हैं कि भगवान जो त्रिलोकी के नाथ हैं, आखिर उनको जरूरत क्या है कि देवक्यम वासुदेवस्य जातो किमनो चिकीर्षिता, वो देवकी और वसुदेव के घर पे आने की उनको जरूरत क्या है, वो क्यों जेल में आते हैं और ना संसार में आने की जरूरत क्या है, आप हमें ये मत बताइएगा। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृतम, ये मत बताइएगा क्योंकि ये तो धोखेबाजी है। भगवान को ना तो संसार में दुष्टों का विनाश करने के लिए आने की जरूरत है और ना ही भक्तों का कल्याण करने के लिए आने की जरूरत है, क्योंकि जो भगवान केवल अपनी आंख के इशारे से प्रलय कर सकते हैं, एक कंस को या एक रावण को मारने के लिए उनको संसार में आना पड़ेगा ये बात हमको डाइजेस्ट नहीं होती है, तो हमें भगवान के इस भौतिक जगत में आने का वास्तविक कारण बताइए। और उसके बाद वो चौथा श्लोक पूछते हैं, चौथा सवाल पूछते हैं, तस् कर्माण्यु दाराणी परिगीतानि सूरिभि ब्रूहिण शर्द दानस्य लीलया ददत कला। आप हमें ये बताइए कि भगवान ने कृष्ण के अतिरिक्त और कौन कौन से अवतार लिए हैं और उन्होंने भगवान ने कौन कौन सी लीलाएं की हैं, वो भी हमें बताइए। और उसके अलावा पांचवे सवाल में वो पूछते हैं, अथा क्या ही हरे धीमन अवतार कथा शुभा लीलया ददत सर्वम मीश्वर आत्ममायया। आप हमें ये बताइए कि भगवान ने अपने कृष्ण जन्म में जो जो लीलाएं की, एक तो भगवान क्यों आए, आने का कारण बताइए, और जो जो लीलाएं की वो बताइए, और तीसरा कि उनके कौन कौन से अवतार हुए। तीन सवाल ये। पहला सवाल कि मनुष्य दुखी है तो उनका कल्याण कैसे होगा, दूसरा सवाल आत्मा का आनंद कैसे हो, तीसरा भगवान ने क्यों वासुदेव और देवकी के घर में जन्म लिया, चौथा भगवान ने कौन कौन सी लीलाएं की, पांचवा भगवान के कौन कौन से अवतार हैं, और छठा सवाल पूछते हैं कि ब्रूहि योगेश्वर कृष्ण ब्रह्मणे धर्म वर्मणि स्वाम काष्टा मधुनो पेते धर्मा कम शरणम गता। कि आप हमें ये बताइए कि भगवान जब संसार में होते हैं तब तक तो वो धर्म की रक्षा करते हैं, लेकिन जब भगवान इस भौतिक जगत से चले जाते हैं तो फिर धर्म की रक्षा कौन करते हैं, फिर धर्म की सुरक्षा करने वाले कौन है। तो पहला जो सवाल है कि जीवों का कल्याण कैसे हो, तो उसका उत्तर देते हुए कहते हैं, सवै पुंसन परो धर्मो यतुर्भक्ति रदोक्षजे, के सब जीवों का कल्याण तो सिर्फ भगवान की भक्ति करने से होगा। यतुर भक्तिर अधोक्षजे, जीव का कल्याण आप सोचते हो कि सारे लोग दुखी हैं, उनका कल्याण कैसे हो, सवै पुंसा परो धर्म। वैसे तो मनुष्य जीवन के बहुत सारे धर्म हैं, आप माँ हो तो माँ का कर्तव्य, आप पत्नी हो तो पत्नी का कर्तव्य, आप पुत्री हो तो पुत्री का कर्तव्य, सबको अपने अपने कर्तव्य, लेकिन इन कर्तव्यों को निभाने के साथ साथ यदि आप भगवान की भक्ति नहीं करते हो तब तक आपका कल्याण नहीं होगा। इसलिए क्या करना है, जीव को अपना कल्याण करने के लिए क्या करना है, भगवान की भक्ति करनी है। तो भगवान की भक्ति करने से क्या मिलेगा, तो वो बताते हैं, वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजत जनयत याशु वैराग्यम ज्ञानम त यद है तुकम। के भक्ति का मतलब है भगवान के साथ विवाह करना। भक्ति का मतलब क्या है, भगवान के साथ विवाह करना, और विवाह करने के बाद संतान की उत्पत्ति होना अनिवार्य है, संतान की उत्पत्ति होनी चाहिए। भक्ति, अगर कोई कहता है कि मैं भगवान की भक्ति करता हूँ, उसका मतलब क्या है कि मैंने भगवान को विवाह, मैं भगवान को अपना पति स्वीकार करती हूँ, और पत्नी वही सुशील है जिसको संतान उत्पन्न हो। तो भक्ति करने से क्या कोई संतान की उत्पत्ति भी होती है, मानो ऐसे पूछे, तो बोला हाँ, जनयत याशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। भक्ति करने के बाद हमको दो संतान की उत्पत्ति होती है, जब हम भगवान को अपना पति स्वीकार करके उसकी भक्ति करते हैं तो दो संतान की उत्पत्ति होती है, कौन सी, ज्ञानम च वैराग्य, ज्ञान और वैराग्य, ये भक्ति की दो संतानें हैं। अगर कोई भक्ति कर रहा है भगवान की, नाम जप कर रहा है, कथा कीर्तन कर रहा है, लेकिन उसको ये ज्ञान ही नहीं हो रहा है कि मैं आत्मा हूँ, ज्ञान का मतलब होता है संसार से मेरा कुछ लेना देना नहीं है, मैं आत्मा हूँ, कुछ हिसाब किताब पूरा करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, और ये कंप्लीट करने के बाद मुझे वापस भगवान को, भगवान के पास आना, असल में मैं भगवान का हूँ, मुझे भगवान को प्राप्त करना है, ये ज्ञान है। लेकिन आप सारी जिंदगी कथा सुनते रहो लेकिन संसार का मोह अभी तक खत्म नहीं हुआ, अभी अपने बेटे के अंदर मोह पड़ा हुआ है, बेटे के बेटे के अंदर मोह पड़ा हुआ है, घर में मोह पड़ा हुआ है, ये खाऊं वो खाऊं, भक्त के मन में यदि खाने की इच्छा है ना, कि मुझे ये खाना है, अभी मुझे ये खाना है। कभी कभी हम बोलते हैं भाई भगवान को प्रसाद भोग लगा के ही आपको खाना चाहिए, और भगवान के भोग में तो कोई तामसी वस्तु डाल ही नहीं सकती, थूम बसर भी नहीं डाल सकते ना हम भगवान। तो बोले थूम बसर जब बगैर तो खा दो बड़े ना, तो अभी तक इतनी दिनों से तुमने भगवान की भक्ति की है, अभी तक थूम बसर से भी यदि आसक्ति नहीं गई है तो फिर क्या है, वैराग्य तो आया ही नहीं ना। वैराग्य आना चाहिए कि वो चीज मुझे स्वीकार करनी ही नहीं है जो भगवान को अच्छी नहीं लगती। भक्ति करने के बाद तो वैराग्य आना चाहिए, मैं वही स्वीकार करूंगा। प्यार का क्या मतलब है? आप अगर किसी से प्यार करते हो, अगर आप ये दावा करते हो कि मैं इससे प्यार करता हूं, तो आप वो कोई कार्य नहीं करोगे जो आपके प्रेमी को पसंद नहीं है। एक ही मतलब है ना। आप कोई पत्नी बोलती है मैं अपने पति से प्यार करती हूँ, और वो पति बोलता है देखो मैं तुम्हें ये चाहता हूँ कि तुम मार्केट नहीं जाया करो दूसरों के साथ। बोले तुमसे प्यार करती हूँ लेकिन तुम्हारी बात नहीं मानूंगी, तो ये तो प्यार नहीं हुआ भाई। वरना तो क्या बोलते हैं भाई इनको पसंद नहीं है ना इसलिए मैं नहीं करती, ऐसे बोलते हैं ना सब। जो प्यार करते हैं तो उनके लिए सेक्रीफाई भी करना चाहिए ना। हम तो खाली नाम का बोलते रहते हैं कि भाई भगवान से प्रेम करते हैं, और भगवान के लिए इतनी छोटी चीज मतलब क्या है, कोई बड़ी बात नहीं है। नॉन वेजिटेरियन छोड़ देना या फिर थूम बसर छोड़ देना कोई बड़ी, मर थोड़ी जाएगा बंदा। लेकिन वो बोले नहीं ये हमसे नहीं होगा, चाय तो मैं नहीं छोड़ सकती। तो छोटी छोटी चीजों का भी अगर वैराग्य नहीं है तो वो पत्नी कैसी है? पति तो स्वीकार कर दिया मगर बांझ पत्नी है, बच्चा नहीं हुआ उसको, ज्ञान और वैराग्य अभी तक नहीं आया, तो वो खुशकिस्मत पत्नी नहीं बोली जाती है। तो क्या होना चाहिए? अगर जीव को अपना कल्याण करना है पहला सवाल, तो उसको क्या करना है? भक्ति करनी है। और अगर आत्मा को आनंदित करना है तो उसका भी ये नात्मा सुप्रसिद्धति, जब तक आत्मा खुश नहीं होगी जब तक के जीव भगवान के साथ संबंध नहीं जोड़ेगा। आत्मा क्या है? भगवान भगवद्गीता में बोलते हैं ममैव अंश जीवलोके, जीव जो है वो मेरा अंश है, और अंश तभी आनंदित होता है जब वो अपने पूर्ण के साथ मिलता है। तो आत्मा तभी आनंदित होगी जब उसका संबंध भगवान के साथ होगा। कौन सा संबंध आप आत्मा का भगवान के साथ करते हो, वो आपके अपने लेवल के। कोई भगवान को अपना पति बनाता है, कोई पुत्र बनाता है, कोई पिता बनाता है, लेकिन उसके साथ एक संबंध होना चाहिए। सख्य हो, दास्य हो, या फिर माधुरी हो, कोई संबंध भगवान का जब बनाते हैं तब जीव को आनंद प्राप्त होता है। और उसके अतिरिक्त आगे में कहते हैं कि भगवान के कौन कौन से अवतार होते हैं, तो वो अवतारों की कथा बताते हैं कि भगवान के पहले तो मुख्य तीन अवतार होते हैं, उनको पुरुष अवतार बोलते हैं। क्या अवतार बोलते हैं? पुरुष अवतार होते हैं। उसमें एक पुरुष अवतार होता है कारण दर्शय विष्णु, दूसरा होता है गर्भोदर्शय विष्णु, और तीसरा होता है क्षीरोदर्शय विष्णु। ये भगवान के पुरुष अवतार हैं। कारण दर्शय विष्णु क्या करते हैं? उनके रोम खुम्पों से ब्रह्मांड निकलते हैं, अलग अलग जितने भी रोम हैं उन रोमों से ब्रह्मांड, जब वो सांस लेते हैं उनका जो लोक है कारण दर्शय विष्णु जो है हमारे इस भौतिक ब्रह्मांड से ऊपर होते हैं। ऊपर एक पर्दा है, पर्दे के ऊपर विरजा नदी है, विरजा नदी पे कारण दर्शय विष्णु है, और वो जब सांस लेते हैं तो उनसे ब्रह्मांड निकलते हैं। और गर्भोदक्षय विष्णु क्या करते हैं? उस ब्रह्मांड के अंदर आकर शयन करते हैं। ब्रह्मांड जो होता है जब उनके सांस से उत्पन्न होता है तो वो बिल्कुल ब्लैंक एंड डार्क होता है, उसके अंदर कुछ नहीं होता, अंधेरा होता है, खाली होता है। लेकिन भगवान के ही जल से, भगवान के शरीर के जल से आधा ब्रह्मांड भर जाता है, और दूसरा पुरुष अवतार गर्भोदक्षय विष्णु एक ब्रह्मांड के अंदर आता है। ये ऐसे है, जो सब जो सिंपल शब्द में अगर हम बोले तो कारण दक्षय विष्णु हमको एक घर लेके देते हैं, ब्रह्मांड है एक घर, और गर्भोदक्षय विष्णु को उसमें बैठते हैं कि अब आप जाइए, अब आप इस घर में उत्पत्ति कीजिए। तो गर्भोदक्षय विष्णु का पहला पुत्र उत्पन्न होता है उनकी नाभि कमल से, एक कमल का फूल निकलता है जिसमें ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं, और ब्रह्मा जी को आदेश आता है कि आप तपस्या कीजिए, और तपस्या करने के बाद उनको पूरा ज्ञान हो जाता है कि पहले कौन कौन से जीवों ने कौन कौन से कार्य किए हैं इसके अनुसार उनको जन्म दिया जाता है। तो ब्रह्मा जी पूरी सृष्टि को, ये जो पूरा ब्रह्मांड है उसमें गर्भोदक्षय विष्णु बिल्कुल नीचे है, एकदम नीचे गर्भोदक्षय विष्णु है, और उसके बाद पृथ्वी सेंटर में है, ऊपर जो है भूलोक, भूवरलोक, जनलोक, तपलोक, महरलोक, स्वर्गलोक, सिद्धलोक और ब्रह्मलोक, ऊपर सात लोक है और नीचे छह लोक है। यहाँ भूलोक सेंटर में है, अतल, वितल, तलातल, महातल, रसातल और पातल, ये सारे 14 लोक हैं। और 14 लोकों का निर्माण जो है वो गर्भोदक्षय विष्णु करते हैं। और तीसरे गुण अवतार कौन है? क्षीरोदक्षय विष्णु। वो क्या करते हैं? वो प्रत्येक जीव के हृदय में जाकर बैठते हैं, वो परमात्मा के स्वरूप में होते हैं। और परमात्मा क्या काम करते हैं? श्रीमद् भागवत भगवद गीता के 13.26 में बताया जाता है कि परमात्मा का क्या काम क्या है, उपद्रिक्षा अनुमंता च भरता भोक्ता महेश्वरम परमात्मेति चाप्युक्तम देहेस्मिन् पुरुषम परम, कि वो क्या करता है? वो जज करता है। एक तो वो आपको आज्ञा देता है, हमको याद नहीं होता कि पिछले जन्म में हमने किसके साथ क्या किया है, हमको याद नहीं है ना, लेकिन फिर भी कभी कोई व्यक्ति हमको दिखता है, उससे प्रेम करने का दिल करता है, उससे हम अच्छे से बात करते हैं, उसको है ना अच्छे से ग्रीटिंग करते हैं, उसके साथ मिलते हैं, अच्छा कभी हमारे घर में कोई आता है उसे देखकर खुशी होती है, और कभी कभी कोई आता है उसकी तो शक्ल अच्छी नहीं लगती, हमको पता नहीं ऐसा क्यों होता है, कभी कभी हम पूछते हैं यार क्यों इसके साथ ऐसे, पता नहीं क्यों इसकी शक्ल ही पसंद नहीं है मुझे, ऐसा होता है ना। तो ये पहले का कोई ना कोई कनेक्शन है, कोई ना कोई कार्मिक अकाउंट है जिसके कारण हमको कुछ लोग पसंद नहीं है, किसी किसी के साथ वैसे ही द्वेष करने का दिल करता है, किसी किसी को देखते ही प्यार करने का दिल करता है, किसी किसी का दिल करता है कि इसकी कैसे हेल्प की जाए, और किसी किसी को आए भले ना साथ, कभी कभी ऐसा होता है ना। तो हमको नहीं पता कि हम ऐसा क्यों कर रहे होते हैं, लेकिन हृदय में बैठे परमात्मा को सारा पता है। वो जो थोड़ा सा भी एक छोटा छोटा चॉकलेट का भी हिसाब होगा ना, वो हिसाब भी हमको पूरा करना है। एवरी एक्शन हैज एन अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन, हर एक एक्शन हमारे हम जो भी कार्य करेंगे उसका हमको रिएक्शन तो देना ही पड़ेगा। तो चाहे जैसे भी स्वरूप में कैसे देना है वो तो हृदय में बैठा हुआ परमात्मा हमको बताता रहता, और दूसरा नोट करता रहता है, आपने इसके साथ ये किया वो भी लिख लिया, आपने ये सोचा, आपने एक्शन खाली हम जो शरीर से करते हैं वो नहीं होता, जो हम सोचते हैं ना मन से वो भी हमारे कर्म होते हैं। जो हम किसी को बोलते हैं ना, बोलते मैंने उसको कुछ किया थोड़ी, खाली थोड़ा सा डांटा था, थोड़ा सा बोला था, वो बोलना भी आपका कर्म बनता है। मतलब मन वाणी और शरीर के साथ जो भी आप कार्य करते हो उसका रिजल्ट आपको परमात्मा लिख लेते हैं और उसका रिजल्ट आपको देना पड़ता है। तो ये क्षीरोदक्षय विष्णु का एक काम तो ये है कि हृदय में बैठकर जज करते हैं, लिखते हैं, आपको अनुमति देते हैं कि ऐसा करना है, सेंशन करते हैं। और दूसरा काम क्या है? दूसरा काम ये है कि जब भी भगवान का कोई अवतार होता है तो भगवान का अवतार जो है वो भगवान मतलब देवताओं के ऊपर कोई संकट आता है, देवता जाके बोलते हैं, क्षीरोदक्षय विष्णु को ही बोलते हैं, भाई ये प्रॉब्लम हो गई है। आप देखते हो ना जब रामानंद सागर का कोई भी सीरीज आता है, देवताओं के ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है तो किधर जाते हैं? विष्णु भगवान के पास जाते हैं, वो क्षीरोदक्षय विष्णु है, उनके पास जाते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम हो गई है, संसार में दुख बढ़ गए, तो आप अवतार दीजिए। यानी कि देवताओं को ये अधिकार नहीं है कि गोलोक वृंदावन में जाकर भगवान को डिस्टर्ब कर सके। भगवान ने ये तीन पुरुष अवतार बनाए हैं इस ब्रह्मांड को चलाने के लिए, ब्रह्मांड के कार्यों को चलाने के लिए ये पुरुष अवतार हैं, तीन अवतार। और जब देवता जाते हैं क्षीरोदक्षय विष्णु के पास तो वही उन्हीं से अवतार निकलते हैं जितने भी, तभी हम बोलते हैं ना ये सब भगवान विष्णु के अवतार हैं। तो ये अलग बात है कि कृष्ण एक बार आते हैं, ब्रह्मा जी के एक कल्प में 100 बार चतुर्युगी होती है। चतुर्युगी मतलब सत्युग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। 100 बार नहीं, सॉरी 1000 बार चतुर्युगी होती है। कितने बार होती है? 1000 बार चतुर्युगी होती है। और इन 1000 चतुर्युगी को 14 मनुओं के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। 14 मनु राज्य करते हैं। कितने मनु राज्य करते हैं? 14 मनु राज्य करते हैं। और एक मनो के हिस्से में 71 चतुर्योगी आती है। कितनी आती है? 71 चतुर्योगी एक मनो के। टोटल कितने मनो है? 14 मनो। बीच वाला मनो कौन सा होगा? सातवां मनो। सातवें मनो के हिस्से में कितने चतुर्योगी आए? 71। सबके पास 71 है तो सातवें वाले के पास भी। सातवें मनो का 71 चतुर्योगी का जब 28वां द्वापर युग होता है, मतलब 27 चतुर्योगी गुजर जाते हैं, जब 28वां द्वापर युग आता है उसमें विष्णु भगवान का अवतार तो अपने ओन से आता है, सो तो आता है, लेकिन उसमें भगवान श्री कृष्ण साक्षात प्रकट होते हैं। पूरे ब्रह्मा जी के एक कल्प में यानी 1000 चतुर्योगी में सिर्फ एक बार ही भगवान साक्षात आते हैं। तो हम ये क्यों सुने? इसलिए सुने क्योंकि ये सातवां मनु चल रहा है और उसका 28वां चतुर्योगी चल रहा है। अभी अभी जो रिसेंट द्वापर युग गया है जस्ट अभी, उसमें भगवान साक्षात आए थे, साक्षात कृष्ण आए थे, वरना नहीं आते। अब भगवान कब आएंगे? कितने होंगे?
14 हो जाएंगे फिर।
अब देखो 1000 चतुर्योगी में एक बार आते हैं, अब आए हैं तो वापस 1000 होंगे, उसके बाद आएंगे भगवान। मतलब अभी तो देखो कितना रिसेंट है भगवान श्री कृष्ण। अभी हमारे पास वृंदावन भी है, अभी हम वृंदावन में वो सारे भगवान के जो लीला स्थल है, भगवान के पास टाइम यहाँ पर हुए हैं, वो स्थान हमको मिलते हैं, वो जेल भी है जहाँ भगवान ने जन्म लिया है, वो राधा कुंड है जो राधा रानी ने खोल, ये श्याम कुंड है, वो वृक्ष है, इवन भगवान के फुट स्टेप्स भी है जहाँ पर भगवान के चरणों के निशान है। तो धीरे 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 ये सब लुप्त हो जाएगा, किसी को याद नहीं रहेगा कि कृष्ण आए थे। और फिर जब भगवान वापस आएंगे तो हमारे लिए ये सबसे बड़ा सौभाग्य है कि हमने इस चतुर्युगी में जन्म लिया है। और उससे भी सुंदर बात क्या है कि जिस चतुर्युगी में यानी सातवें मनु के 28वें द्वापर युग में कौन आते हैं? भगवान श्री कृष्ण। और सातवें मनु के 28वें कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आते हैं। चैतन्य महाप्रभु हर कलयुग में नहीं आते हैं, चैतन्य महाप्रभु भी तभी आते हैं जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार होता है। और ये जो हम पढ़ते हैं ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे
राम राम राम, हमको कितना सरलता से ये मंत्र मिला है। हमको लगता है इसकी इम्पोर्टेंस नहीं लगती ना, हमको कितना सरलता से मिला है। ये मंत्र सिर्फ 10,000 वर्ष तक होता है बस। 10,000 वर्ष के बाद किसी को महामंत्र याद नहीं रहेगा। वेदों में महामंत्र गुप्त है, किसी को भी पता, सिर्फ हमें ये अपॉर्चुनिटी जो इस कलयुग में पैदा हुए ना, उनको ही ये भाग्य सौभाग्य मिला है कि वो बस ये महामंत्र जप करे, 16 माला जप करे, भगवान को प्राप्त करेंगे। वरना हर किसी के बस की बात नहीं है ये। किसी को पता भी नहीं होगा कि महामंत्र भी होता है, जिसको आप कभी भी जब भी दिल करे कभी भी कैसे भी करके जप कर सकते हो। लेकिन ऐसा होता है ना, जो चीज आपको सरलता से मिल जाती है उसका कदर नहीं होता, उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। इसलिए हमको महामंत्र के प्रति इतना आकर्षण नहीं है। हम जप भी करते हैं तो नीरस भाव से करते हैं, मैकेने के लिए जप कर रहे होते हैं, उसके अंदर कोई भाव नहीं होता, उसके अंदर कोई प्रेम नहीं होता। लेकिन अगर हमको पता चले कि भगवान की कितनी बड़ी कृपा है, तो फिर हम तो एक सेकेंड भी, हरिदास ठाकुर जी हैं, वो 24 घंटे में 22 घंटे जप करते थे, और 22 घंटे में 2 घंटे मतलब बाकी जो 2 घंटे बचते थे उसमें वो सारे काम करते थे। सोते भी थे, स्नान भी करते थे, प्रसादम भी खाते थे, फ्रेश जो भी करना होता था वो 2 घंटे में करते थे। तो हरदास ठाकुर की माता जी है ना, वो देखते थे कि मेरा बेटा सारा दिन जप कर रहा है, सारा दिन जप कर रहा है। तो माँ थी तो बहुत प्रेम करती थी, तो वो ना बहुत सारे प्रसादम बनाती थी, कि बात नहीं करती थी ना किसी से भी। हम तो अपने बच्चों से पूछेंगे ना कि भाई आज क्या खाओगे, तो वो कभी बात ही नहीं करते थे, वो तो हरे कृष्णा करते। तो वो हर तरह की सब्जी बनाती थी कि ये भी बना दूं, क्या खबर ये पसंद आ जाए, क्या खबर, एक ही टाइम खाते थे तो ये भी बनाते थे। तो बहुत सारी बाउल्स में छोटी छोटी सब्जियां बनाती थी, खीर बनाती थी, स्वीट्स बनाती थी। और जब 22 घंटे में एक टाइम वो प्रसाद खाने के लिए बैठते थे, तब देखते थे इतना सारा प्रसाद है तो रोने बैठ जाते थे। तो माँ ये क्या है, इतना सारा टाइम वेस्ट, इतना मेरे पास टाइम थोड़ी है, मैं इतना सारा प्रसाद खाऊंगा, मेरे पास मुझे तो इतना टाइम मेरा वेस्ट होगा। आप मेरे लिए ऐसे नहीं बनाया करो, आप ऐसा करो एक की खिचड़ा बनाया करो, उसके अंदर आलू भी डालो, मटर भी डालो, तूरी भी डालो, इसे घोल के बना दिया करो ताकि मैं जल्दी से खा लूं और अपना नाम सब करो। ये इकड़ो इकड़े हम स्वाद बटने बटने मैं तो टाइम वेस्ट ही ना ले जा रहा हूं। तो है ना, जो भक्त जिसको पता चल जाता है कि मुझे भगवान ने कितनी कृपा की है कि इतना सरल मंत्र दिया है, इतना प्यारा मंत्र दिया है जिसके द्वारा मैं भगवान को प्राप्त कर सकता हूँ, फिर तो वो कितनी तीव्रता से जप करेगा। तो हमको चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भगवान ने तो अपनी पूरी शक्ति इसके अंदर डाल दी। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्र अर्पिता, नियमित सिमरणे न काल, कोई नियम भी नहीं रखा, जब दिल करे जैसे दिल करे जब करो, लेकिन दुर्दैव मी दृश्य मीहा जनी न अनुराग, लेकिन मेरा तो कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि मेरा कोई अनुराग ही नहीं होता, इच्छा ही नहीं होती है। इच्छा नाम जप तो ऐसे होना चाहिए, महाप्रभु कहते हैं नाम जप करते वक्त कैसा होना चाहिए, नयनम गलद अश्रु धाराया, वदनम गदगद रुद्रया गिरा, हृदय हृदय जो है ना वो फट जाना चाहिए भगवान को याद करते करते, और गला रुद्ध जाना चाहिए, इतना प्रेम से भगवान को स्मरण करना चाहिए। एक एक क्षण जो है युगायतम निमे क्षीण, एक निमिष जो है पलक भी अगर झुकती है तो भी हमको ऐसा लगना चाहिए कि ये तो एक वर्ष हो गया, एक एक वर्ष, एक एक जो सेकंड है वो भी एक वर्ष की तरह लगना चाहिए कि मैं भगवान से कितना दूर हूँ। हमको कभी एहसास होता है कि मैं भगवान से दूर हूँ? कभी भी ऐसा ना, हम इतने बिजी हैं अपने लाइफ में, हमको कभी याद भी नहीं रहता कि हम भगवान के हैं। भगवान ने हम बताया कि पिता हमारे जगत हो। आप देखो, आप घर से जब बाहर जाते हो, माता हो ना आप थोड़ी देर के लिए घर से बाहर जाते हो, आपके बच्चे घर में होते हैं तो बोलते हैं अभी तक मम्मी नहीं आई, अभी तक मम्मी नहीं आई, ऐसा लगता है ना उनको कि अभी तक मम्मी नहीं आई, क्यों अभी तक मम्मी क्यों दूर है, ऐसा लगता है उनको। लेकिन हमको क्यों अभी तक नहीं लगता कि मैं अब तक कृष्ण से, वो हमारे माता पिता है ना, कभी हम लोग नहीं सोचते कि कितना समय हो गया हम कृष्ण से दूर है, हम कब मिलेंगे कृष्ण से, इच्छा तक नहीं होती है। मतलब अपने अपने आप को हमने इतना संसार में उलझा दिया है कि हमारी इच्छा भी नहीं होती। भक्ति करते हैं ठीक है, संसार में हमको नाम जप भी कर रहे हैं, श्रवण भी कर रहे हैं, लेकिन वो तीव्रता कृष्ण से मिलने की नहीं होती है, क्योंकि हमको लगता है कि बस यहाँ पर भक्ति करके हम सुकून से जिए, सुकून से जिए, जब मरे की तब देखा जाएगा, ये जो समय है वो अच्छे से गुजरना चाहिए, बाकी वो मिलन की तड़प नहीं आती है। लेकिन जब हम शुद्ध वैष्णवों के विषय में सुनते हैं तो वो किस तरह से चैतन्य महाप्रभु तड़पते थे कि मुझे भगवान से मिलना है। तो इस तरह से भगवान के ना तीन अवतार होते हैं, पुरुष अवतार होते हैं, कारण दक्षय विष्णु, क्षीरो दक्षय विष्णु और गर्भो दक्षय विष्णु। उसके अलावा भगवान के गुणावतार होते हैं। गुणावतार मतलब गुण, तीन गुण होते हैं ना, कौन कौन से, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण से भगवान पालन करते हैं, रजोगुण से भगवान क्रिएशन करते हैं, पैदा करते हैं, और तमोगुण से भगवान नाश करते हैं। तो रजोगुण के अवतार जिनसे क्रिएशन होती है वो कौन है, ब्रह्मा जी, जिसने पूरे संसार, भगवान ने संसार को सृजन करने का कार्य, क्रिएट करने का कार्य किसको दिया, ब्रह्मा जी को दिया, और पालन करने का कार्य विष्णु भगवान ने लिया। विष्णु भगवान ने वो सत्वगुण के अवतार हैं, ब्रह्मा जी कौन से हैं, रजोगुण के अवतार हैं, और विष्णु भगवान सत्वगुण के वो पालन करते हैं, और तमोगुण के अवतार कौन है, महादेव, जो सबकी प्रलय करते हैं। तो ये भगवान के कौन से अवतार है, गुणावतार, और भी भगवान के लीला अवतार होते हैं। अब यहाँ पर अंतिम ये टॉपिक है लीला अवतार है। तो कौन कौन से अवतार है लीला अवतार, पहला अवतार है चार कुमार का, सरत, संदन, सनातन और संत कुमार, ये पहले भगवान के अवतार है। दूसरा अवतार है वराह भगवान, वराह भगवान ने क्या किया, समुद्र से पृथ्वी को निकाला और स्थापित किया। उसके बाद तीसरा है नारद मुनि का, उसके बाद नर नारायण, नारद मुनि ने क्या किया, संसार में किस तरह से भक्ति को प्रकाशित करना है, वो भक्त किस तरह से बनाए, उन्होंने भक्ति कैसे करनी है वो बताया। उसके बाद नर नारायण का अवतार है जो कि बद्री का आश्रम में तपस्या करते हैं, और अब तक वो तपस्या कर रहे हैं, अब संसार में जितनी भी थोड़ी बहुत भक्ति दिखती है ना उनकी तपस्या के कारण है। और उसके बाद दत्तात्रेय का अवतार है कपिल देव का होता है जिन्होंने अपनी माता देवभूति को सांख्य योग का ज्ञान दिया, उसके बाद ऋषभ देव का होता है जिन्होंने 100 पुत्रों को शिक्षा दी, उसके बाद पृथु महाराज का होता है जिन्होंने पृथ्वी की रक्षा की और समस्त जो समस्त वस्तुओं की जो प्राप्ति पृथ्वी ने बंद कर दी थी वो उनको दी, उसके बाद मत्स्य अवतार की कथा है, मत्स्य अवतार है, कच्छप है, धन्वंतरी है, मोहिनी है और उसके बाद नरसिंह भगवान है, वामन भगवान है और जमदग्नि के पुत्र के रूप में परशुराम भगवान जिन्होंने 21 बार पूरे क्षत्रियों को का नाश किया, उसके बाद वेद व्यास जी है, श्री राम है, कृष्ण है, बलराम है और उसके बाद बुद्ध अवतार है और कलयुग में कलयुग के अंत में एक अवतार भगवान के आएंगे जिनका नाम है कल्कि। और ये तब होगा जब कलयुग की उम्र कितनी है, 4,32,00,000 वर्ष के कलयुग है और 4,32,000 वर्ष के कलयुग है और 4,32,000 वर्ष में से अभी कलयुग का कितना समय गुजरा है, 5,000 साल। अभी कितने बचे हैं, 4,27,000 साल कलयुग के और भी बचे हैं, 4,27,000 साल। जब कलयुग का एकदम एंड होगा ना उस समय कल्कि अवतार आएंगे और उस समय कलयुग के एंड में कोई भी भगवान का नाम नहीं ले रहा होगा, मतलब बिल्कुल कोई भी अगर भगत भी होंगे तो इस तरह से नहीं है जैसे हम तिलक लगा के घूमते हैं या नाम जप करते हैं, सब कोई नहीं होगा। कोई अगर कोई रेयर भगवान का भगत होगा भी तो भी किसी गुफा में किसी जंगल में वहां पर होगा। संसार में सब अपराधी होंगे क्योंकि अभी भी हम देखते हैं संसार में कितना, अभी तो सिर्फ कितने साल हुए, 5,000 साल हुए, अभी 4,27,000 साल के बाद दुनिया की क्या, अभी भी किसी को नाम भगवान का देते हैं तो समझ में नहीं आता। अभी भी लोगों को, अभी हम लोग सिंध में जाते हैं किसी को पता ही नहीं भगवान कौन है, पहली क्लास ये करनी पड़ती है भाई भगवान कौन है, उसके बाद ये बताना पड़ता है तुम लोगों की किताब कौन सी, सबके मंदिर होंगे घर में और मंदिर में कोई भगवान नहीं होता है, कोई है ना संत की फोटो रखी होगी। मैं बोलती हूँ भाई भगवान ये है तो बोलते तां जो पेंजो भगवान, असा जो पेंजो भगवान, ये तो तुम्हारा भगवान है ना, मेरा तो अपना, मैं तो अपने भगवान को, मैं ही बोलती हूँ भाई। कभी किसी के घर पे जाके रिश्ते करते हैं, प्रसादम लगाते हैं, मैं माता जी प्रसादम पहले भोग लगाएंगे फिर खाएंगे, तो बोला हाँ ठीक है लगाया भोग, अंदर मैंने भगवान का थे भाई भोग किसको लगाऊ, तो बोला देखो भगवान वो भगवान ही था है, तो भगवान तो सभी के अंदर आया ना तो ना जी भोग लगाया, मुझे ठीक है भगवान सभी के अंदर है, कुत्ते जी भी अंदर भगवान है, वो कुत्ते के भोग लगाया था, भगवान जो है स्वरूप तो रखो मेरे घर में। तो जनाम कहे ठीक है असान जो भगवान तो यो असा इन खी लगाएगा सी ना भाई, ता कहीं भी भगवान बनना सकता हो जा, भगवान तो पहले से होता, किसी को बनाया थोड़ी जाता है भगवान, आपने इसको भगवान बना दिया, वो बोलते ही मुझे दादा भगवान है, वो मुझे दीदी भगवान है, मुझे भगवान हो मुझे वो भगवान, अरे भगवान कृष्णा है इकड़ो भगवान है, 4 बजे भगवान दब, ये थोड़ी होता है। तो उनको अभी तक ये भी समझ, अभी इतना रिसेंट, इतनी एजुकेशन, इतना शास्त्र का ज्ञान, जहां जहां गीता सम्मेलन हो रहे हैं, भागवत कथा हो रही है, लेकिन अभी भी लोगों को इतना, मतलब इतनी उनके अंदर अज्ञानता है। अभी 4,00,000 साल के बाद क्या होगा, फिर तो कोई है ना कथा करने के लिए जाएगा या नहीं जाएगा वो भी पता नहीं। अभी भी हम देखते हैं कोई सोचते हैं पागल हो गए, सारा दिन घूमते रहते घर तरह जो कुछ को नहीं कदे कितने बेटा। तो ऐसा है कि अंत समय में क्या होगा, कलयुग के एंड में विदाउट मर्सी उनके हाथ में एक ना तलवार होगी और ऐसे तलवार घुमाएंगे, घोड़े पर बैठेंगे, जो भी सामने आएगा उसकी गर्दन कटेगी और उसके बाद प्रलय होगा और उसके बाद एक दोबारा से एक सत्य होगा। तो ये सब कथाएं हम आगे पढ़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना प्रेम से श्रवण किया। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, कलयुगाधार हरे कृष्ण महामंत्र की, श्रीराम रूपाल की, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कलयुगाधार हरे कृष्ण महामंत्र की, युगधर्म संकीर्तन यज्ञ की, श्रीला रूपाद की, निधाई गौर प्रभा।